स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जनवरी की 15 तारीख और दिन मंगलवार। प्रयागराज में आज से कुंभ शुरू, करोड़ों लोग करेंगे आज शाही स्नान।
शाम को 5:20 तक शाही स्नान के जुलूस आते रहेंगे और निर्मल अखाड़ा उस अंतिम अखाड़ा वहाँ समाप्ति करेगा। पिछली बार करीब 70-80 लाख लोग पहले स्नान में आए थे और इस बार हम लोग 1 से 1.25 करोड़ लोगों का अनुमान कर रहे हैं।
बुलंदशहर हिंसा में गोकशी मामले में 3 अभियुक्तों पर लगी रासुका। मेघालय खादान में फंसे मजदूरों का अब तक नहीं कोई पता चला। भारत के सिदी समुदाय पर होगी एक खास रिपोर्ट।
चेन्नई प्रैक्टिस कर रहे और स्पोर्ट्स चेन्नई मारी ये स्टेट मेडल नेक्स्ट।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार विकास त्रिवेदी से। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले कुंभ मेले का आज पहला शाही स्नान है और आधिकारिक रूप से इसी दिन से मेले की शुरुआत हो जाती है। 49 दिन तक चलने वाले इस मेले का समापन 4 मार्च को होगा। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने सांसदों से अपील की है कि वो ब्रेग्जिट समझौते पर आज होने वाले मतदान में समर्थन करें। यूरोपीय संघ से हुए समझौते का विरोध करने वाले सांसदों से मे ने कहा कि वो इस पर एक बार फिर से विचार करें। मे ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये यूनाइटेड किंगडम के टूटने की वजह बन सकता है। मे के एक मंत्री ने ये माना कि मंगलवार को होने वाले मतदान में सरकार के जीतने की उम्मीद कम है। सरकार के चीफ व्हिप गैरेथ जॉनसन ने इस समझौते के विरोध में इस्तीफा दिया है। जॉनसन ने कहा कि हितों के टकराव से बचने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
There will be no significant change to this deal before the meaningful vote.
मतदान से पहले समझौते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस मद्देनजर और सरकार का व्हिप होने के नाते मुझे इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि मैं समझौते के लिए वोट नहीं कर सकता, और तब सरकार का व्हिप होने के नाते मैं उस हालात में नहीं रहता जिसमें मैं सरकार का विरोध कर पाता। ये थे गैरेथ जॉनसन के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें उनके रूस के लिए काम करने का दावा किया गया था। शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2017 में ट्रंप के FBI चीफ जेम्स कूमी को निकालने के बाद ये जांच प्रारंभ हुई थी। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा पूछना अपमान करना है, मैंने रूस के लिए कभी काम नहीं किया और ये बात मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पोलैंड के डांसी शहर के पूर्व मेयर पॉवेल एडमोविच की अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। पॉवेल की रविवार को हुए चैरिटी समारोह में एक हमलावर ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। वो 20 साल से मेयर पद पर थे। हमला करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि मेयर की पार्टी ने गलत कारणों से उसे गिरफ्तार किया था और इसी का बदला लेने के लिए उसने ये हमला किया। पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड टस्कर ने कहा कि पॉवेल एक बहादुर इंसान थे और बुरे लोगों के खिलाफ खड़े रहते थे। पूर्व राष्ट्रपति लेक वोवेंसा ने भी पॉवेल को श्रद्धांजलि दी। जो भी हुआ उसके लिए पूरा सिस्टम और राजनीति जिम्मेदार है। सभी तरह के बीमार लोग ही ऐसा कदम उठाते हैं। पॉवेल मेरे अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। ये थे लेक वोवेंसा के शब्द। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन की अदालत के उस आदेश की आलोचना की है जिसमें ड्रग तस्करी मामले में कनाडा के एक नागरिक को मौत की सजा सुनाई गई है। चीनी टेलीकॉम कंपनी के एक अधिकारी की वैंकूवर में गिरफ्तारी के बाद रॉबर्ट लॉयड नाम के कैदी का केस फिर से सुना गया जिसके तहत ही ये नई सजा सुनाई गई है। इससे पहले रॉबर्ट को 15 साल की सजा दी गई थी। नाइजीरिया से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रांत के विद्रोहियों ने उत्तर पूर्वी शहर रन पर कब्जा कर लिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नाइजीरियाई सेना और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी हो रही है। विद्रोहियों ने कुछ घरों में आग लगा दी है जिसके बाद स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। इसराइल के गृहमंत्री का कहना है कि अब इसराइली गोताखोर बुद्धापेस्ट की डनुबे नदी में खोजी अभियान कर सकेंगे। इस अभियान के तहत उन यहूदियों के अवशेषों को खोजा जाएगा जिनकी होलोकॉस्ट में हत्या कर दी गई थी। इसराइल और हंगरी के बीच इस बारे में समझौता हुआ है। गेबन के राष्ट्रपति अली बोंगो 3 महीने देश से बाहर बिताने के बाद अब वापस लौट सकेंगे। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जनवरी की 15 तारीख और दिन है मंगलवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 1.5 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले की आज से शुरुआत हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले इस कुंभ का आज पहला शाही स्नान है। मेले में बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी आए हुए हैं। सुनिए प्रयागराज से समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
मकर संक्रांति से शुरू होने वाले कुंभ मेले में आज सुबह से ही अखाड़ों के साधु संतों के शाही स्नान के अलावा तमाम श्रद्धालु भी गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। इस बार मेला क्षेत्र को 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ाकर करीब 45 किलोमीटर के दायरे में फैला दिया गया है। मेला क्षेत्र के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कुंभ के पहले स्नान में करीब 1 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है।
जो प्रथम शाही स्नान है उसको सबसे ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए जो योजना है, हमने पूजनीय अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उनके साथ उनके आशीर्वाद प्राप्त किए और उसके पश्चात ये तय हुआ है कि जो परंपरागत रूप से क्रम है 5:15 बजे वहाँ प्रारंभ किया जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़ा पहले प्रस्थान करेगा, शाम को 5:20 तक शाही स्नान के जुलूस आते रहेंगे और निर्मल अखाड़ा अंतिम अखाड़ा वहाँ समाप्ति करेगा। सभी श्रद्धालुओं को उसका दर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई है। पिछली बार करीब 70 से 80 लाख लोग पहले स्नान में आए थे और इस बार हम लोग 1 से 1.25 करोड़ लोगों का अनुमान कर रहे हैं।
शाही स्नान को देखते हुए प्रयागराज जिले के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार कुंभ 2019 को अब तक का सबसे भव्य कुंभ बता रही है और सरकार ने इसकी खूब ब्रांडिंग भी की है। करीब 9 महीने पहले यूनेस्को ने कुंभ मेले को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया था। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने अन्य राज्यों में खुद जाकर राज्यों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और वहां के लोगों को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले 71 देशों के राजनयिकों को कुंभ की तैयारियों को दिखाने के लिए भी मेला क्षेत्र में बुलाया गया था। कुंभ के दौरान प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा तंबुओं का अस्थायी शहर बस जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुंभ के आयोजन पर इस साल करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। कुंभ मेले में साधु संतों के संगठनों को अखाड़ा कहा जाता है। कुल 13 अखाड़े होते हैं और शाही स्नान के दौरान हर अखाड़े का समय प्रशासन की ओर से तय किया जाता है। प्रयागराज जोन के एडीजी एसएन सावंत ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
सभी फोर्सेस हमारा मौजूद है। गंगा का कटान को देखकर हमारे वहाँ पे रिवर लाइन वगैरह लगाया गया है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और ताकि और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे लोग रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे स्पेशल फोर्सेस भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हमारे पास ATS के कमांडोज भी मौजूद है, हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भी मौजूद है, सिविल पुलिस भी उस पर नजर रखेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी अपग्रेड कर दिया गया है, सब लोग नजर रखेंगे।
बताया जा रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए 20,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। कुंभ मेले के दौरान तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और देश विदेश से आने वाली तमाम संस्थाएं भी अपने शिविर यहां लगाती हैं। कुंभ मेला 4 मार्च तक चलेगा। समीर आत्मज मिश्र, BBC प्रयागराज।
और प्रयागराज से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर। बुलंदशहर में पिछले महीने की कथित गो हत्या के मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दिया है। सियाना तहसील में हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित कुमार नामक युवक की मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक कथित गो हत्या मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया था और अब अजहर खान, नदीम खान और महबूब अली पर रासुका लगाया गया है। इसकी जानकारी खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुज झा ने BBC को दी। उनका कहना था,
अब जो है इस पर अभियुक्त जो जेल में थे उनमें से 3 ने अपनी जमानत की अर्जी डाली थी, इससे उनके जमानत पर छूटने की प्रबल संभावना थी। उसको देखते हुए उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई की गई है। रासुका के तहत उनको निरुद्ध किया गया है। इसमें अजहर हैं, नदीम हैं और महबूब नाम के 3 जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ फिलहाल जो है नशे की कार्रवाई करी गई है, जिनके द्वारा की बेल के लिए एप्लीकेशन किया गया।
ये थे बुलंदशहर के DM अनुज झा। बुलंदशहर की घटना के मामले में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की गई थी, जिनमें 1 मामला हिंसा का था और 1 गो हत्या का। दंगा मामले में 27 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और अभी हाल ही में इसके मुख्य अभियुक्त योगेश राज को गिरफ्तार किया गया है। और अब चलते हैं भारत के पूर्व में ओडिशा की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के बालांगीर जा रहे हैं। पिछले एक महीने में मोदी का ये तीसरा ओडिशा दौरा है। मोदी आज लगभग 1500 करोड़ रुपए की केंद्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, लेकिन दौरे से ठीक पहले उनके लिए अस्थायी हेलीपैड निर्माण करने के लिए पेड़ों के काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सुनिए भुवनेश्वर से संदीप साहू की ये रिपोर्ट।
ये विवाद रविवार को तब शुरू हुआ जब बलांगीर के जिला वन अधिकारी यानी DFO समीर सतपथी ने घटनास्थल की ताज़ा स्थिति का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से कहा कि हेलीपैड के लिए करीब 1000 से 1200 पेड़ काटे गए हैं। रेलवे की जमीन पर ये पेड़ 2016-17 में उड़ीसा वन विभाग द्वारा शहरी वनीकरण योजना के तहत लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि जब उनके विभागीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश की तो उन्हें कहा गया कि ऊपर से आदेश है, लेकिन BBC ने जब इस संदर्भ में DFO सतपति से संपर्क किया तो वे इस बारे में कुछ कहने से कतरा गए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है इसलिए उसे लेकर रेलवे के अधिकारी व्यस्त हैं। उन्होंने कहा है कि दौरा खत्म होने के बाद वे इस बारे में सूचना देंगे, इसलिए अभी इस बारे में कुछ कहना अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। उधर रेलवे अधिकारी भी मौके की नजाकत को समझते हुए आधिकारिक रूप से कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन अपना नाम गुप्त रखने के शर्त पर ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने BBC से कहा कि 1000 से अधिक पेड़ काटे जाने की बात सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि पेड़ एक भी नहीं काटा गया है, 6 पेड़ों की बस प्रूनिंग की गई है और 40-50 छोटे पौधे और झाड़ ही काटे गए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से ये भी कहा गया है कि जितने पौधे काटे गए हैं उससे दुगने पौधे लगाए जाएंगे। हेलीपैड बनाए जाने से पहले घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो देखने और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगता है कि वहां पेड़ नहीं ज़्यादातर झाड़ ही थे। गौरतलब है कि हेलीपैड का निर्माण रेलवे ने नहीं बल्कि पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन ने किया है, लेकिन ये बात जरूरी है कि जो पौधे काटे गए हैं उसके लिए वन विभाग की अनुमति नहीं ली गई है, जो जरूरी है। पर्यावरणविद विश्वजीत महंती कहते हैं,
बलांगीर में जो पेड़ कटा हुआ है वो तो बिल्कुल बेहद, वहाँ जब भी कोई जंगल इलाके से पेड़ कटती है तो वहाँ उसके लिए क्लियरेंस चाहिए। केंद्र सरकार ने क्लियरेंस दी है, राज्य सरकार ग्रहण करती है, ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। कटा गया है उससे जो जो कार्यकर्ता है उसमें जो इसमें इन्वॉल्व है जिसमें जिस लोगों ने पेड़ काटे उनका विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, उनसे वन विभाग कार्रवाई जरूर करेगी।
2 महीने पहले अनुगुल जिले में एक बियर फैक्ट्री के लिए जब 700 पेड़ काटे गए तो भाजपा ने इस मामले को काफी उछाला था, लेकिन प्रधानमंत्री के हेलीपैड के लिए 1000 से भी अधिक पेड़ काटे जाने को सत्तारूढ़ बीजू जनता दल शायद इसलिए मुद्दा नहीं बना रही क्योंकि इससे स्थानीय प्रशासन की भूमिका ही उजागर होगी। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
और पूरब से अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में। मेघालय में ईस्ट जयंतिया हिल्स के एक कोयला खदान में फंसे 15 मजदूरों के बारे में आज एक महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। केंद्र और राज्य सरकार की लगभग सभी एजेंसियां इस काम में जुटी हैं, लेकिन किसी को फिलहाल कोई सफलता नहीं मिल सकी है। सुनिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के कसान इलाके में पानी से भरी खदान में फंसे 15 मजदूर न जाने किस स्थिति में है। दरअसल एक महीने बाद भी देश के कई हिस्सों से आए बचाव अधिकारी इन मजदूरों का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए हैं। नौसेना के गोताखोरों से लेकर उड़ीसा के साइक्लोन प्रभावित इलाकों में काम कर चुके फायर सर्विस के अनुभवी लोगों के हाथ भी अब तक कुछ नहीं लगा है। बचाव कार्य में जुटे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी खदान के भीतर भरा पानी बताया जा रहा है, जिसे निकालने के लिए पिछले 15 दिनों से पंप निर्माता कंपनी किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, कोल इंडिया और उड़ीसा फायर सर्विस लगी हुई है। अब तक लाखों लीटर पानी खदान से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अगली सुबह खदान का पानी उसी स्तर पर पहुंच जाता है। खदान में चल रहे बचाव कार्य से जुड़ी ताजा जानकारी देते हुए मेघालय सरकार के प्रवक्ता आर सुसंगी ने बीबीसी से कहा,
पानी बिल्कुल कम नहीं हुआ है, एक इंच भी कम नहीं हुआ। अभी पंपिंग चल रहा है, किलोस्कार ब्रदर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, फायर सर्विस ओडिशा, हाँ, सहायक है।
मेघालय की इस कोयला खदान में चल रहे बचाव अभियान से कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग इसे देश में अब तक का सबसे कठिन बचाव अभियान बता रहे हैं। इसकी एक वजह है यहाँ की रेट होल माइनिंग, अर्थात चूहे के बिल जैसे छोटे छेद के अंदर जाकर कोयला निकालना, बिना किसी मैप के गैर वैज्ञानिक तरीके से इन खदानों में काम करना बेहद जोखिम भरा है। कई जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना योगदान दे चुके जाने माने इंजीनियर जसवंत सिंह गिल कहते हैं,
माइनिंग का काम है तो माइनिंग वालों को बुलाना चाहिए, वही काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दो चीज बोली थी उनको कि कोई ना कोई नदी है वहाँ से इनका कोई इंटेक है, उसको लोकेट करो, उसको प्लग करो और पानी निकालो। सिर्फ पानी निकालने का काम शुरू किया है, वो भी ऑलमोस्ट 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद। अगर मान लिया इनसे प्लग नहीं होता, लेकिन पानी उतना ही निकालते हैं जितना आ जाता है, ऐसे सारी उम्र लगे रहेंगे तो पानी में।
मेघालय की इस अवैध खदान में चल रहे बचाव कार्य पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा अब तक एक बार भी घटना स्थल पर बचाव कार्य का जायजा लेने नहीं गए हैं। राज्य सरकार से हर कोई पूछ रहा है, आखिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के प्रतिबंध के बाद भी जिले में गैर कानूनी तौर पर कोयले की खदानों में खनन का काम क्यों चल रहा था। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का, और हमारे साथी विकास त्रिवेदी तमाम अखबारों के साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। विकास, बताएं क्या कहते हैं आपके अखबार।
इकबाल जी, जेएनयू में कथित राष्ट्र विरोधी नारेबाजी मामले में 3 साल बाद कन्हैया और उमर खालिद समेत 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। इस खबर को सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 किसानों की आमदनी के मामले में बीते 18 सालों में सबसे खराब साल होगा। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के हवाले से अखबार ने ये खबर की है। इसी के ठीक बगल में खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस मामले में नोटिस भेजा है जिसके तहत कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 10 एजेंसियों को सभी के कंप्यूटर में मौजूद डाटा पर जो नज़र रखने का एक अधिकार दिया था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 6 हफ्ते का वक्त दिया है। द स्टेट्समैन की खबर है कि एम नागेश्वर राव की सीबीआई के अंतरिम निदेशक के तौर पर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक याचिका दायर की गई है, उसमें जो 10 जनवरी को उनको ही नियुक्त किया गया था अंतरिम उसके लिए। इंडियन एक्सप्रेस की पहली खबर है कि सरकार उन प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिसके तहत किसानों को बिना ब्याज के कर्ज मुहैया कराया जा सके। जनसत्ता की खबर है कि मुंबई हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। राणा अमरीका में 14 साल की सजा काट रहे हैं। इकबाल जी, आज मायावती का जन्मदिन है, इरफान का
15 जनवरी है।
जी, इरफान का कार्टून भी इसी पर है जिसमें एक गोल सा बेस है, उस पर सपा लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक हाथी बना हुआ है। ये केक है जिसके साथ खड़े कार्यकर्ता कह रहे हैं बहन जी के जन्मदिन पर इस साल ये केक है। अमर उजाला की खबर,
अच्छी बात है
जी। अमर उजाला की खबर है कि सिख दंगा मामले में दोषी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके अलावा कुछ अखबारों में कुंभ की तस्वीरों के को भी जगह दी गई है। ये अमर उजाला में ही जो शीर्षक लगाया गया, संगम पर आस्था की संक्रांति। हिंदुस्तान अखबार की खबर है कि लोकसभा के 60% सांसदों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भाजपा नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। पार्टी को अपने अंदरूनी तंत्र से मिल रहे फीडबैक से ये जानकारी मिली है कि जो कार्यकर्ता है वो नाराज हैं और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं
तो उनके टिकट कट सकते हैं।
जी जी,
ऐसी आशंका तो जताई जा सकती है।
जी, द हिंदू की खबर है कि जो यूपी में एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो एक गंभीर इशू है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कल बोला है। इसके अलावा अगर बात करें तो दैनिक जागरण की खबर है कि 5 लाख रुपए तक हो सकती है आयकर छूट की सीमा।
चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है, अगर हो जाए तो तमाम लोगों को उससे फायदा होगा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब एक खास रिपोर्ट। भारत में सिदी समुदाय के लोग सदियों से रह रहे हैं जो मूलतः अफ्रीकी हैं। सिदी समुदाय के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। पिछले कुछ दशकों में बहुत कुछ बदला है उस समुदाय में और अब इस समुदाय की कुछ लड़कियां खेल की दुनिया में भी अपना नाम कमाने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए कर्नाटक से सुमिरन प्रीत कौर की ये खास रिपोर्ट।
जंगलों में जनवरी की सुबह में अपने घर से बस कुछ ही दूर पर हैं सिदी समुदाय के लोग और ये आवाजें हैं उनके लोक नृत्य की। भारत में सिदी समुदाय के लोग सदियों से रह रहे हैं जो मूलतः अफ्रीकी हैं। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में रहते हैं। भारत के नागरिक होने के साथ साथ कुछ सिदी जंगलों में गुजर बसर कर रहे हैं। अपने गांव से कुछ किलोमीटर दूर अपने स्कूल में अभ्यास करने पहुंची हैं श्वेता। कर्नाटक के बिल्की गांव में रहने वाली श्वेता सिदी एथलेटिक्स में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं। उनका सपना है नेशनल चैंपियन बनना और इसलिए वो लगातार दौड़ने की प्रैक्टिस करती रहती हैं।
चलना प्रैक्टिस कर रहे और स्पोर्ट्स चेनक मारी गे स्टेट मेडल नेशनल मेडल।
अगर हमें और अभ्यास के मौके मिले तो हम मेडल जीत सकते हैं। अगर हम मेडल जीतेंगे तो बाकी लोग हमारे काम की तारीफ करेंगे और हमें प्रोत्साहित भी करेंगे।
उनके रिश्तेदार फ्लोरिन भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं। उनका तो ख्वाब है ओलंपिक्स में जाना।
प्रैक्टिस तुम्बा मारबेको ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದೆ।
ಮೈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ತಕ್ ಪಹುಂಚನಾ ಚಾಹತಿ ಹೂನ್ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಕ್ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಮೈ ಕಡಿ ಮೆಹನತ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂನ್।
ಸಿದಿ ಸಮುದಾಯ ಕೆ ಲೋಗ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ಭಾಷಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈನ್ ಇನ್ಕಾ ಪಹನಾವಾ ಭೀ ಆಮ್ ಲೋಗೋ ಜೈಸಾ ಹೀ ಹೈ। ಆದ್ಮಿಯೋ ನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಪಹನಿ ಹೈ ತೋ ಔರತೋ ನೆ ಸಾಡಿ ಪಹನಿ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಫಿರ್ ಭೀ ಸಿದಿ ಸಮುದಾಯ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೈ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಲೋಗ್ ಹೀ ಜಾನ್ತೆ ಹೈನ್। कर्नाटक के मुंडगौड़ और बिल्की गांव में तो लोग इनके बारे में जानते हैं। जब श्वेता अपने गांव बिल्की से या मुंडगौड़ से दूर के इलाकों में जाती हैं या फिर कुछ खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती हैं तो कई लोग उन्हें जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हैं।
और सिद्धियोरिक नोड़े ही रला दरिंदा और कूदलेला मुट्टिरतर है।
कुछ लोग सिदी समुदाय के बारे में नहीं जानते। वो हमारे बालों को छूते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि हम भारत से ही हैं। वो हमसे अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं और हमें घूरते हैं। कभी अगर प्रतियोगिता में हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो वो अफ्रीका से हैं, फिर भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।
संवैधानिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 2003 में सरकार ने सिद्धियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए थे। इनकी प्रतिभा को और बेहतर कैसे किया जाए इसके लिए सरकार भी कोशिशें करती रहती है। कर्नाटक के युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग के कमिश्नर के श्रीनिवास ने कहा,
नाउ वी आर कमिंग विद द प्लान सो दैट वी विल ओनली गो टू द सिदी ट्राइब्स।
हमारी कोशिश रहती है कि हम उन तक पहुंचे और उन्हें बताएं कि उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं ताकि वो पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा कर सकें। सिदी समाज की लड़कियों का खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है।
जहां एक तरफ सरकार इनकी मदद कर रही है तो कुछ गैर सरकारी संगठन भी इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स के नितेश श्रीनिवर ऐसे ही छुपे टैलेंट को ढूंढते हैं, उन्हें सामने लाते हैं और उन्हें ट्रेन भी करते हैं।
feels that there is some potential in their genetic history itself।
बहुतों को ऐसा लगता है कि इनकी जेनेटिक हिस्ट्री में कुछ खास है जिसकी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के लिए मेडल जीत सकते हैं और ब्रिजेस ऑफ स्पोर्ट्स ऐसे टैलेंट को ढूंढकर उन्हें ट्रेनिंग देता है।
ऐसा ही एक टैलेंट है रवि किरण जो श्वेता और फ्लोरिन के साथ मुंडगौड़ में लॉयोला स्कूल में पढ़ते हैं और क्लास के बाद प्रैक्टिस करते हैं। वो इतने तेज भागे कि कुछ ही मिनट में ग्राउंड के दूसरे कोने पर पहुंच गए।
पहले मैं इंटरनेट पर वीडियो देख देख कर अभ्यास करता था पर जब से मुझे ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई है तब से अच्छा लग रहा है। मेरी माँ मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है और मेरा आइडियल है उसेन बोल्ट
तरह ना आगे इष्टपड़ते हैं।
कई दशकों पहले सिदी ब्रितानी, अरब और पुर्तगालियों के साथ भारत आए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इनमें वो प्रतिभा है जिसकी बदौलत वो मेडल ला सकते हैं। 1980 के बाद बहुत से सिदी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं। श्वेता के रिश्तेदार फ्लोरिन के पिता खुद एक नेशनल स्तर के प्लेयर रह चुके हैं। उनका नाम है पेड्रो दियोग सिदी, जो अपनी बेटी के लिए एक ख्वाब देखते हैं।
जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा है, मैं तो मेरे बच्चे के साथ वो देखना पड़ेगा। मैं वो इंडिया के लिए जरूर मेडल आएगी। वो श्वेता उधर काम कर रहे, बिल्कुल नहीं बोलेगा, ये चिकबिल्की का बेटी इधर काम कर रहे।
अब शाम का वक्त हो चुका है और अपनी क्लास के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे श्वेता, रवि किरण और फ्लोरिन। भारत में 50,000 से ज्यादा सिद्धि रहते हैं जो अपने लिए एक अलग पहचान ढूंढने में कामयाब हो रहे हैं। सुमिरनप्रीत कौर, BBC कर्नाटका।
मुंबई में बेस्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल को एक सप्ताह से अधिक समय हो चुका है। आखिर इस हड़ताल के क्या कारण हैं? यही सवाल पूछा हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने मुंबई में BBC संवाददाता जानवी मुले से।
उनकी तनख्वाह और उनके काम करने के जो जिसे वर्किंग आवर्स या वर्किंग कंडीशंस कहा जाता है, उनमें बदलाव, उनमें सुधार चाहते हैं कर्मचारी। और साथ ही साथ बेस्ट को जो घाटा हो रहा है उसको अगर कम करना हो तो बेस्ट के बजट को BMC के बजट में शामिल किया जाए, ऐसी एक प्रमुख मांग है जो बरसों से चलती आ रही है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं है, ऐसा मान सभी जो कर्मचारी है उनका कहना है। और इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर वो हड़ताल पे चले गए हैं। पिछले साल उनको ठीक से बोनस भी समय पे नहीं मिला था, और जो कर्मचारी निवृत्त हुए हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन्स को लेके भी कई सारी मांगे हैं, और ये सारी मांगों को लेके वो 8 दिनों से हड़ताल पे है।
जानवी जी, जैसे आपने कहा कि लोकल के बाद ये दूसरी लाइफलाइन है मुंबई के लिए, क्योंकि बहुत लोग यात्रा करते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है मुंबई में, तो अब लोगों को किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है?
मुंबई के जो विद्यार्थी है या फिर कष्टकारी वर्ग है, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से आने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर बेस्ट की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं। उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ये थे मुंबई से BBC संवाददाता जानवी मूले। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज एडिलेड में खेला जाएगा। सिडनी में खेले गए पहले वनडे में हार के बाद भारत को दूसरे वनडे में जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि टेस्ट सीरीज में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश जरूर करने वाला है। रोहित शर्मा की शतकीय पारी और महेंद्र सिंह धोनी की अर्धशतकीय पारी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में भारत की हार को नहीं टाल पाई और भारत को 34 रन से हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से इस जीत के साथ ही 3 मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान 1-0 से आगे हो गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज का मैच भारत हर हाल में जीतना जरूर चाहेगी। आज के मैच पे एक नजर क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन की।
T20 सीरीज ड्रॉ हुई थी, टेस्ट सीरीज आपने जीता, वो प्रायोरिटी था। मैं मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज जीतना सबसे बड़ी बात थी, लेकिन अगर आप 3 सीरीज में से 2 जीतते हैं तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही सफल दौरा रहा है ऑस्ट्रेलिया का। अगर ये हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जो है, जो शाइन जो है, जो चमक जो है, थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। मैं नहीं कहूंगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं टेस्ट को ODI से और T20 से, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये सीरीज भी इंडिया जीतती है तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है इमॉर्टल, एवरग्रीन हो जाएगा, हमेशा याद आएगा।
तो आज का ODI मैच शुरू होगा सुबह 8:50 से।
और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कहे जाने वाले कुंभ मेले का आज पहला शाही स्नान है। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने सांसदों से अपील की है कि वो ब्रेक्जिट समझौते पर आज होने वाले मतदान में समर्थन करें। न्यूयॉर्क में 9/11 हमले की जगह ग्राउंड जीरो से कला के उस नमूने को हटा दिया गया है जिसमें सऊदी के झंडे का कुछ हिस्सा नजर आता था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें उनके रूस के लिए काम करने का दावा किया गया था। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली दीपक जसरोटिया ने। आपसे अगली मुलाकात होगी भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे, कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।